ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरस्तिषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो। भक्त्या विहीन अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताक्ष कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते शरणा। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेशकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणं। आज बड़ी खुशी है कि हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं पीजी में, यहाँ पर हम हिंदू सनातन धर्म के वंशधर हैं। हम आज उनसे मिलकर के हमें अपार खुशी हो रही है। विशेष करके हमें महान संत तुलसीदास की यहाँ पर हमें स्मृति आ रही है, उनका स्मरण हो रहा है। यद्यपि पहले वाल्मीकि रामायण था किंतु इस महापुरुष महासंत ने सारे विश्व में अत्यंत सरल सहज सब भाषा में आराम की गाथा विश्व में सर्वत्र उन्होंने प्रचारित की। हमारी संस्कृति का भारत वैदिक ज्ञान और संस्कृति का एक अपूर्व धरोहर है, इसलिए यहाँ प्रवेश करते ही जब इसका नाम मैंने देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। इसलिए अपने सभा के प्रवचन के प्रारंभ में मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। यहाँ हम थोड़ा सा एक परिचय दे दूँ कि हम लोग भारतवर्ष में मथुरा वृंदावन में रहते हैं। घर बार छोड़कर संसार संपूर्ण रूप से छोड़कर के वृंदावन में यह राधा कृष्ण की परम पुनीत परम पवित्र लीलाएं मधुर लीलाएं हुई। वहीं पर गिरिराज गोवर्धन जमुना नदी राधा कुंड श्याम कुंड वहीं पर कदम्ब कानन इत्यादि हैं, वहाँ पर बंसी वट है, वहीं हम लोग रहते हैं, वहाँ से हम आए हैं। किस लिए आए? कुछ ब्रज का संदेश देने के लिए जो हमारी सनातन धर्म का प्राण है। कुछ लोग गंभीर अध्ययन नहीं होने के वजह से सनातन धर्म किसे कहते हैं नहीं समझ पाते। सनातन क्या है, सनातन धर्म क्या है, मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल करके तब फिर अपने प्रवचन में आऊंगा। ये भी जरूरी है, हमारे भाई बंधु लोग, हमारी माताएं और बहनें भी इस चीज को सुन करके समझेंगे यहाँ हमारा सनातन धर्म क्या है, हम उसी से निकले हैं। हमारी सनातन वैदिक ज्ञान क्या है, सनातन धर्म कहते हैं किसे, इसलिए थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल करके आगे सुनूंगा। पहली बात ये समझेंगे सनातन शब्द का अर्थ क्या होता है। हम अभी जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ हम सुन रहे हैं, सुनने के साथ ही साथ में वो भूतकाल बन जाता है। जो कुछ अभी देखा, अभी जो देख रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, मैं गया कहने के साथ साथ भूतकाल हो गया। इस जगत में वर्तमान नहीं है, कुछ भविष्य है और कुछ भूतकाल है। एक जगह है जिसको बैकुंठ कहते हैं, साधुओं का हृदय है, बैकुंठ गोलोक वृंदावन है, साकेत है, ये सनातन स्थान है। जिस चीज का जन्म नहीं, मरण नहीं, परिवर्तन नहीं, जो एक रस्ता समय हो, जो पुराना और परिवर्तित नहीं होता, जो सदा एक रस रहता है, उसका कभी अभाव नहीं है, वो है सनातन। हम जो कुछ इस आंखों से देखते हैं, ऐसी कोई चीज है जो जन्मती नहीं है, मरती नहीं है और पुराना नहीं हो जाता है, अंत में नष्ट नहीं हो जाता, ऐसा कोई चीज है? आंखें उस चीज को नहीं देख सकती। आंखें जिन चीज को देखती हैं, हमारे सेंसेस जिनको ग्रहण करते हैं, इंद्रियां जिनको उपलब्धि करते हैं, वो सभी चीज मॉर्टल है, अनित्य है, नित्य नहीं है, सनातन नहीं है। सनातन माने होता है सनातन, सन धातु का विस्तार होता है, जो सदा है, भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा, इसका जन्म मरण नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है, ये सब थोड़ा सा विचार। यह शरीर जिसको आप कहते हैं मैं, मेरा नाम कोई भी रख लीजिए, मुकुंद जी या कोई भी नाम, यह शरीर जिसको हम लक्ष्य करते हैं, इसका जन्म हुआ कुछ दिन पहले, 40 वर्ष पहले, 10 दिन पहले, 100 वर्ष पहले, फिर ये कुछ दिनों के बाद में पुराना हो जाएगा, इसके बाद में सड़ गल जाएगा, इसके बाद में समाप्त हो जाएगा। यह घर बना है, किसी दिन बना, फिर किसी दिन टूट जाएगा, अंततः प्रलय में तो जरूर ही टूट जाएगा। इसलिए इस संसार की कोई चीज भी नित्य और सनातन नहीं है। हाँ, इस शरीर में रहने वाला जो है, शरीरी जिसको कहते हैं, आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो नित्य सनातन है। इस शरीर में दो चीजों को समझना चाहिए, एक आत्मा और एक समस्त आत्माओं का जो परम है, श्रेष्ठ है, सबका संचालन करने वाला है, सबका साक्षी और नियंता है, जिससे विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि होती है, सृजन होता है, उससे पालन पोषण होता है, अंत में उसी में फिर मिल जाते हैं, वो है परमात्मा। और एक जो इस शरीर में रहते हुए भी परमात्मा की उपलब्धि नहीं कर पाता है और समझता कि मैं ही करने वाला हूं, मैं अनडूअर, मैं करता हूं, भोगता हूं, मैं किसी, मेरा नाम यह है, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं, मैं ईसाई हूं, बौद्ध हूं, क्रिश्चियन हूं, मैं जानवर हूं, ये सब जो उपलब्धि होती है, तो ये सब अनित्य है। किस इसमें रहने वाला जो आत्मा है, जो भोग करता है सुख दुख आदि, मालूम नहीं ये मैं कौन हूं, वो अभी आत्मा इसके और समस्त आत्माओं में जो विराजमान रहता है वो परमात्मा है, वही हमारे कृष्ण है, वही हमारे राम है, वही हमारे कृष्ण है। इसलिए इस चीज को अब थोड़े से और विश्लेषण करके थोड़ा सा बतलाऊं। सबसे पहले इस सनातन धर्म को, सनातन वस्तु को प्रकाश करने वाले हमारे वेद हैं। वेद माने क्या? वेद माने कोई कागज का टुकड़ा नहीं, कोई किसी चीज का टुकड़ा नहीं, वेद का नाम है ज्ञान। वेद टू नो, क्या ना जानना, जानना। वेद माने होता है इंद्रियां, वेद माने होता है अनुभूति, वेद माने होता है उपलब्धि, और विशेष अर्थ में इसका वेद का अर्थ होता है ज्ञान, जानना। वेद वेदयति जो जनाता है हमें, ये आया कहां से? इसलिए सबसे पहले ये समझो, हम भगवत दास हैं, प्राणी मात्र, केवल मन की नहीं, मनुष्य पशु पक्षी की पतंग जितने ये है, यहां तक कि जानवर वृक्ष लता गुल्म ये सभी, इसके अंदर में प्राण है, जिनमें चेतनता है, वो चेतन है। तो भगवान के दास होने पर भी भगवान को भी भूल करके इस संसार में हम समझते हैं कि हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, हम देवता हैं, हम राजा हैं, राष्ट्रपति हैं, हम पार्लियामेंट के मेंबर हैं, हम बौद्ध हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, जानवर हैं, हम सुअर हैं, गधे हैं, ये सभी समझ रहे हैं, किंतु हम हैं असल में क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। गीता में इसी को कहा गया, ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सना। एक ही चीज हमारे वेदों में, शास्त्रों में, रामायण में, पुराण में, वेदों में एक ही चीज है, दो चीज है ही नहीं, एक ही उस सनातन के लिए बतलाने के लिए, वो सनातन क्या चीज है, हमारी आत्मा क्या है, हम कौन है, इस चीज को दिखलाने के लिए हमारा कर्तव्य क्या है। तो वो प्रभु कृपा करके पहले अक्षर ब्रह्म या शब्द ब्रह्म के रूप में आए, अवतरित हुए इस जगत में। बिना भगवान के भगवान को कोई जना नहीं सकता है, सोई जाने जह देह जनाई, जिसको वो जना देंगे वही जानेगा, दूसरा उनको नहीं जान सकता है। हमको बस यही होना है, सरेंडर करना है उनके चरणों में, अनकंडीशनली सरेंडर करें, मैं आपका हूं, मैं मूर्ख हूं, नहीं जानता। तो ये शब्द ब्रह्म के रूप में आते हैं, वो क्या है, ओम का, पहले इसी रूप में आते हैं, ओंकार भगवत तत्व का आधार है। जैसे जल का आधार क्या है, जल का आधार समुद्र है, अथा समुद्र, जो सारे विश्व में तीन भाग वो पानी है, बाकी एक भाग में स्थल है। तो जलों का आधार ये समुद्र है, किंतु जल का पानी नहीं पी सकते, समुद्र का पानी नहीं पी सकते, क्यों, खारा है। समुद्र का पानी पीजिए तो देखिए पेट पतला गड़बड़ हो जाएगा, एक पक्षी भी उस पानी को नहीं पीती, मनुष्य की तो बात किया, फिल्टर करने के बाद में यदि किसी प्रकार से वैज्ञानिक अनुसंधान हो और पानी में से नमक निकाल दिया जाए तो हो सकता है पी सकते हैं, किंतु भगवान ने बड़ी सरल प्रोसेस बनाया है, तरीके बनाए हैं, समुद्र का पानी भेपर के रूप में बदल करके, बादलों के रूप में ऊपर में जाकर के बरस करके मीठा पानी बरसा देता है। वो पानी है कहाँ का, खारा पानी का, जिसको नहीं पी सकते। उसी तरह से ओंकार है, इसमें रूप नहीं दिखता, ये ओंकार का क्या रूप है, रूप नहीं देखता, उसमें कोई गुण नहीं दिखता, उसमें हम ओंकार को अपना बाप माने, न मैया माने, न पुत्र माने, न भैया माने, न मित्र माने, न सखा माने, न उनको मैया माने, पुत्र माने, न उनको हम अपना क्या माने, उनको अपना प्रियतम माने ओम को। इसलिए ओंकार से प्रभु ने प्रकट किया किसको, गायत्री को, ओंकार से गायत्री हुई, गायत्री का प्राण ओंकार है, किंतु गायत्री कुछ फिल्टर्ड भी है, कुछ विशुद्ध रूप में है। इनका गान करने से गायत्री त्राण हो जाता है, किसका, जीवों का, जो भगवान को भूले हुए हैं उसको पुनः भगवान को प्राप्त होकर के अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, इसी को मुक्ति कहिए, जो कुछ कहिए। ये भी नहीं समझ पाते हम सहज रूप में, तो वो भगवान ने कृपा करके ये गायत्री को वेदों के रूप में प्रकाशित कर दिया। ये वेद त्रय कहलाते हैं, तीन,
हैं तो चार, किंतु कहते हैं इसको त्रयी। क्यों? वेद एक ही था। व्यास जी ने इसको तीन भागों में विभाग कर दिया और जो बाकी रह गया वो मूल रह गया। जो अथर्व वेद एक था उसको विषय के अनुसार में उसे तीन भागों में विभाग कर दिया। जो बाकी रह गया वही तो अथर्व रह गया, बाकी हो गया साम जजु ऋक। वेद एक ही है किंतु इसको वेद त्रयी कहा गया। बड़ा कठिन सब लोगों के ये सतयुग में समझने वाले थे, द्वापर में समझने वाले नहीं रहे, इसलिए व्यास जी ने इन वेदों का संकलन करके इनमें से एक ब्रह्म सूत्र बनाया। वेदों के दो भाग प्रधान रूप से हैं, एक मंत्र भाग और दूसरा कहलाता है उपनिषद विभाग। मंत्र भाग कर्म कांड यज्ञ इत्यादि हैं, हवन होता और ये सब होते हैं, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और फिर वहां से गिर पड़ते हैं। ते तन भुक्त्वा सर्गलोकम विशालम हीने पुण्य मर्तलोकम विशंति। स्वर्ग में जाकर के भाई वहां शांति नहीं मिलेगी, काम क्रोध लोभ मद नहीं जाएगा और भोगों को फिर भोग करके फिर इस जगत में आना पड़ेगा। इसलिए उपनिषद कांड देखकर, उपनिषद माने क्या? उपनिषद अर्थात जो विद्या हमें भगवान ब्रह्म के जो जगत का सृष्टा स्थिति प्रलय करने वाला है उसके समीप जो लाती है विद्या। उप उप माने समीपे, ये उपनिषद में उप है, ये निसर्ग है। जो भगवान के निकट, ब्रह्म के निकट हमें परतत्व जो जगत से सृष्टि इत्यादि जिसे उसके निकट जो विद्या पहुंचा देती है उसका नाम है उपनिषद। किंतु उपनिषद विद्याएं भी धीरे धीरे लुप्त होने लगी। क्यों? ब्रह्मचर्य नहीं रहा, शुद्ध वायुमंडल नहीं रहा, शुद्ध पानी भी नहीं मिला, आजकल शुद्ध हवा भी नहीं मिलती, पानी का भी प्रदूषण, हवा का प्रदूषण, लोगों के चाल चलन का प्रदूषण। कुछ दिनों के बाद में समुद्र में मछलियां भी नहीं रहेंगी प्रशुद्ध प्रदूषण से, कुछ दिन में आदमी का जीवन भी दुभर हो जाएगा, शुद्ध वातावरण नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी। भगवान ने बिना पैसे की यह सब चीजें दी, अब आदमी कंट्रोल करके पंखा लगा दिया, बिजली का बिल जाना पड़ेगा आपको वहां, किंतु भगवान नहीं लेता। पानी आपको समुद्र मीठा बना करके दे देगा, उसके लिए भगवान नहीं पैसा ले, और ये लोग क्या करेंगे, सप्लाई करके एक का दस पैसा ले लेंगे और प्रदूषण बनाएंगे अलग से। भगवान कोई भी चीज का मूल्य नहीं देता, वो भगवान बड़ा दयालु है। तो इसलिए उपनिषदों के होने पर भी वो विद्या धीरे धीरे लुप्त होने लगी। इसलिए व्यास जी ने कृपा करके व्यासों के समस्त उसके उपनिषद के समस्त मूल उपदेशों को एकत्र किया और 350 सूत्र उसके लिए बनाए। पहला सूत्र हुआ था तो ब्रह्म जिज्ञासा, भाई ब्रह्म क्या है, जिससे जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय होती है वो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के साथ में हमारे संबंध में उसी के दास हैं, उसको भूल करके है जगत में दुख भोग रहे हैं जन्म मरण के जंजाल में, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस में पड़े हुए हैं। कोई संसार में सुखी नहीं है, सुखी वही है जिसको आत्मा का रियलाइजेशन आत्मज्ञान हुआ। जो भगवान का भजन करते हैं उनके अतिरिक्त संसार में कोई भी सुखी नहीं है, इस चीज को एकदम समझिए। ये उपनिषदों का विचार है, शरीर मॉर्टल है, अनित्य है, इसमें मैंने जो ये बुद्धि की मैं हूं यह संपूर्ण रूप से भ्रांत विचार है, इस चीज को पहले समझो तो भगवान को पीछे और ब्रह्म को पीछे समझना। किंतु ब्रह्म सूत्र भी धीरे धीरे लुप्त होने लगा, वो भी लोगों के समझ में नहीं आ रहा। तो फिर क्या हुआ, व्यास ने कृपा करके उसका अर्थ तात्पर्य सरल शब्दों में श्रीमद् भागवत बनाया। कैसा बनाया? उन्होंने एक समय में व्यास जी बड़े दुखी हो रहे थे, मैंने वेदों का विभाग किया, धर्मशास्त्र बनाया, पुराण बनाया, मैंने महाभारत की सृष्टि की, उसमें गीता का ज्ञान दिया, सब कुछ किया, किंतु मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, कुछ अभाव सा लगता है, क्यों जीवन सुखी नहीं है। इतने में नारद जी आ गए, उनके गुरु, गुरु ने पूछा कि तुम्हारा चेहरा आज मुरझाया हुआ है, क्यों प्रसन्नता नहीं है। गुरु जी से यही तो मैं नहीं जानता, आप भौरों के वैद्य हैं, आप नाड़ी पकड़ने से ही बतला सकते हैं कि क्या रोग, रोगी क्या समझे अपना रोग, रोगी अपना रोग नहीं समझता। आप लोग नहीं समझ रहे हैं कि आपका क्या रोग है, हम लोग कुछ कुछ समझ रहे हैं, और हमारे ऊपर वाले लोग हमारे रोग को भी जानते हैं है? हम लोग भी पूरे अभी वैद्य नहीं है, अभी वैद्य के कुछ दो चार नुक्से अभी बांधना सीखा है केवल, उनका संदेश हम सुना रहे हैं आपके पास। इसलिए इस चीज को समझिए कि उन्होंने श्रीमद् भागवत की व्याख्या, उन्होंने नारद जी ने कहा कि देखो तुमने बहुत कुछ बनाया, धर्मशास्त्र बनाया, गीता का ज्ञान भी तुमने दिया, तुम जगत गुरु हो बात ठीक है, किंतु तुमने ये नहीं कहा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कौन है, नहीं लिखा, और उसकी सरल सहज रूप में कैसे उपासना हो सकती है तुमने नहीं लिखा, वो है कौन, तुमने लिखा कि जगत के प्राणी मात्र का धर्म प्रेम है, और उस प्रेम की पुतली कौन है, कृष्ण है, रसो वैसह, वो रस स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है। तुमने कहीं लिखा जब वो परब्रह्म मूर्तिमान हो करके जसोदा जी के आंगन में खेलता है, और जसोदा मैया उसको अंगुली से ऐसे ऐसे करती हैं कि तुझे गोदी नहीं दूंगी, और वो परब्रह्म रोता है, जमीन में लोटपोट करता है, तुमने लिखा कहीं, वो प्रेम के वशीभूत है, ये तुमने कहीं लिखा, नहीं तो तुमने लिखा कि वो परब्रह्म सबका सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला होने पर भी वो किसी का मित्र है, कि किसी का सखा है, किसी का प्राण बंधु है, किसी का नौकर बन जाता है प्रेम से, लिखा तुमने तो, नहीं तो इसलिए तुम्हारा चित्त प्रसन्न नहीं है। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजौ कृषाम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ये सनातन पूर्ण ब्रह्म कौन है, यहां पर मैं सनातन ले आ रहा हूं शास्त्रों से, वेदों में, उपनिषदों में, सर्वत्र ऐसा लिखा। सनातन पहले पुरुष को समझो जो कौन है, कुछ लोग समझते हैं कि ये सनातन पुरुष है, उसका कोई आकार नहीं है। अरे वो सनातन पुरुष क्या रहेगा, ब्रह्म जो आकार भी नहीं धारण कर सकता है, इतनी क्षमता नहीं है, तो वो ब्रह्म क्या होगा, वो तो सर्वशक्तिमान है, उसमें सोल पोटेंसी है, जिसमें जिसकी पोटेंसी नहीं है, जिसमें जिस चीज की सत्ता नहीं, उसे वो चीज नहीं हो सकती। बारु मथे बरु हो यघृत सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरीय यह सिद्धांत अपे। कभी पानी से घी निकल सकता है, लाख वर्ष तक उसको मंथन करो होगा घी, अरे भाई पानी में पोटेंसी नहीं है घी की, अरे वो तो दूध को मथने से उसमें से मक्खन, मक्खन को पिघलाओ तो घी निकलेगा, बालू को मथने से उसमें से तेल निकलेगा, सरसों को घानी में दे दो तो उसको पीसने से ही उसमें से तेल निकलेगा, और जिसमें तेल की पोटेंसी नहीं है, धूल को, पत्थर को, बालू को घानी में देकर के पीसो तो तेल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो जिस ब्रह्म रूप की पोटेंसी नहीं है, जिसका रूप ही खुद नहीं है, बाप को रूप ही नहीं है, तो बेटे को रूप कहां से आएगा, समझ रहे हैं, बाप ही का यदि रूप नहीं है तो बेटे का रूप कहां से आया। इस जगत में देखते हैं करोड़ों रूप है, करोड़िया जीव, अरे लाख प्रकार की तो मछली होती है, मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, अरे ऐसे मनुष्य हैं जगत में जो अपने बाप को बूढ़ा हो जाने पर ऊपर फेंक देते हैं, वो लुढ़कता हुआ गिर करके जब मर जाता है उसी को आग में सेक करके खा लेते हैं, ऐसे भी मनुष्य हैं। आप लोग वो मैदे में वो सिंकोनिया क्या होती है, सिंघाड़ा कहते हैं उसको, सिंघाड़ा नाम सुना है,
समोसा,
सिंघाड़ा, उसमें आलू उबाल करके मसाले देकर के बनाते हैं ना, तो असम में पहाड़ी जातियां भी हैं, वो क्या करती हैं, कुकर को, कुकर होता है ना कुत्ता, उसको आग पर जीवंत ही पकड़ करके सेक लेते हैं, उसे गुड़ चना या कुछ खिला देते हैं खूब भर पे, वो खा लेता है और तब उसको पटक करके मार करके उससे आग पर सेक करके उसको खाते हैं। ऐसे भी जानवर लोग हैं, भगवान को तो जानते ही नहीं है, नंग धड़ंग भी रहते हैं, मनुष्य को मनुष्य भी, अपने बाप को भी मार करके खाने वाले अभी हैं। इसलिए कहा गया है वो लोग कौन है, धर्म ही नहीं ना पशु भी समाना, वो पशु हैं, पशुओं के चार पर होते हैं और हम ऐसे पशु हैं जिनकी पूंछ नहीं है और सींग नहीं है, ऐसे हम मनुष्य हैं जो भी भगवान को नहीं जानते, आत्मा को नहीं जानते। इसलिए नारद ऋषि ने उनको कहा आप लिखिए प्रेम से कृष्णचंद्र, जो ये भगवत्ता की हद है, राम कृष्ण नृसिंह वामन सब एक हैं तत्त्वतः, केवल लीला रस के आस्वादन से पूर्णिमा की चांद की भांति एक तत्व हैं, कभी वही कृष्ण के रूप में आए, वही कृष्ण कभी राम रूप में आए, कभी वराह के रूप में आए, कभी मीन के रूप में, दशावतार लीलावतार इत्यादि हैं, वो सब एक ही तत्व हैं, किंतु थोड़ा सा रस वैचित्र है, लीला का वैशिष्ट्य है, राम रास नहीं कर सकते, मर्यादा के अंदर में बंधे हुए हैं, है? राम सीता के अतिरिक्त आप फिर दूसरी शादी नहीं कर सकते, मर्यादा से बंधे हुए हैं, और कृष्ण 16,000 गोपियों के साथ में रास कर सकते हैं, जो जैसा जे जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम, हम जो जैसा हमारा भजन करता है मैं भी उसको उसी रूप में उसका फल देता हूं। ये कृष्ण के लिए रामचंद्र जी कृष्ण ही हैं, किंतु जगत को मर्यादा सिखाने के लिए राम बने हुए हैं, और कृष्ण कौन है, ये भगवत्ता के मूल हैं। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वेदों में भी ऐसा लिखा गया, उपनिषदों में भी ऐसा कहा गया, हमारे तुलसीदास ने भी इन सब शास्त्रों के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, हमारे तुलसीदास जी के रामायण को भी वेद से कम मत समझेंगे, श्रीमद् भागवत का ट्रांसलेशन अनुवाद है वो एकदम, उसमें समस्त निगम आगम वेद पुराण सब उसमें भरा पड़ा हुआ है। श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी भजिय राम सब काज विचार, श्रुति सिद्धांत, श्रुति माने वेद उपनिषद निगम आगम रामायण पुराण सब क्या कहते हैं, भजिय राम सब काज विचारी, अरे भाई यदि कल्याण करना चाहते हो सब कामों को भी बंद रख करके भगवान का भजन कर ले, नहीं तो का बरसा यदि कृषि सुखानी, जब ही मर ही जाओगे तो फिर क्या होगा, कुछ कर लो। इसलिए व्यास जी नारद जी की बात मान करके उन्होंने कृष्ण का लीला चरित्र लिखा, निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संगीतम पिबत भागवतम रसमालयम हुरहो रसिका भूल भाव का। यदि कल्याण करना चाहते हो अपना तो श्रीमद् भागवत का श्रवण करो, उसका कीर्तन करो, यदि एक श्लोक आधा श्लोक एक चरण एक पद कुछ भी सुनो तो उसका कल्याण ही कल्याण हो, किंतु जीवन में आचरण करो। इसलिए वेद गीता इत्यादि जो हैं ये कागज के टुकड़े नहीं हैं, ये ज्ञान के मूर्तिमान विग्रह हैं, इस चीज को समझो। इसलिए कहते हैं कि ये सनातन कौन है, कृष्ण के लिए बतलाया, अहो भाग्यम नंद गोप्र जो कुशाम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म सनातन ब्रह्म है कौन, कृष्ण, पहले इस चीज को समझो। और दूसरी चीज क्या सनातन है ये समझो, एक और चीज सनातन है, गीता को आप लेकर के थोड़ा समझा चलिए, अजो नित्यो शाश्वतो अयं पुराणो हन्यते बाने न हन्यमाने शरीरे नित्य सर्वगत अस्थाणु रचलम अयम सनातनम, दूसरा एक शरीर में रहने वाला एक आत्मा है हम, ये भगवान का अंश है। इसलिए भगवान में जो जो गुण है इसमें भी है, किंतु अणु होने के नाते ये जीवात्मा माया के द्वारा आच्छादित हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा भगवान ब्रह्म है, मुक्त हो जाने पर हम ब्रह्म में मिल जाएंगे, गलत है यह बात, सर्वथा गलत है। कभी भी जीवात्मा परमात्मा भगवान नहीं हो सकता है, हम उनके दास हैं और दास ही रहेंगे। जीव जीव ही रहेगा, किंतु शुद्ध होकर के उसकी सेवा कर सकता है, बस इतना कर सकता है। तो इस शरीर में रहता हुआ अभी हम लोग बद्ध जीव हैं, कुछ